ओम शांति। एक बूढ़ी महिला मरणासन्न है। वो बहुत अमीर है और उसने अपने जीवन के 30 साल एक महातपस्वी योगी है उसकी पूजा में, उसकी भक्ति करने में, उसकी सेवा करने में लगाए थे। वो उसकी शिष्या थी और उस योगी के लिए उसने एक बड़ा बड़ा सा भवन भी निर्माण किया था। वो योगी ब्रह्मचारी था, तपस्वी था। उस बूढ़ी महिला को लगा कि मैंने जिसकी 30 साल तक सेवा की, श्रद्धा का जो पात्र रहा, क्या वास्तव में वो योगी है? मैं अब जा रही हूं, किसी भी क्षण प्राण पखेर उड़ जाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो तपस्वी, वो योगी, वो जिसे मैं अपना गुरु कहती हूँ, क्या वो वास्तव में इतना महान योगी है? वो महिला अपनी दासी को बुलाती है और कहती है, तुम मध्य रात्रि जब वो योगी अपने कक्ष में बैठकर ध्यान करता है आंखें बंद करके, तुम मोहिनी रूप धारण कर जाओ, दरवाजा खोलना और फिर भीतर जाना। वो दासी कहती है, आगे क्या करूं? वो महिला कहती है, जाना, उसके समीप खड़े रहना और उसके हाथ पकड़ लेना। वो दासी जैसा उसे कहा गया ऐसे ही रूप धारण कर मध्य रात्रि जब योगी बैठा हुआ है ध्यान में, तपस्या मुद्रा में, वो दासी दरवाजा खोलती है। वो योगी की आंख खुलती है, वो देखता है ये कौन। वो दासी अंदर प्रवेश करती है, उसके सामने आती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और वो डरने लगता है, कपकपाने लगता है और थोड़ी देर में चिल्लाने लगता है, बचाओ, छुड़ाओ। और उसके हाथ छुड़ाकर वो भागने लगता है। वो दासी आकर बताती है अपनी मालकिन को, ऐसे ऐसे हुआ। वो मालकिन कहती है, उस भवन को आग लगा दो। ये तो झूठा निकला। अभी वो तपस्या की अवस्था को इसने पाया ही नहीं है। अभी तक तो इसके मन में भय बसा है। करुणा की वो अवस्था से बहुत दूर है, मन में अभी द्वंद्व है। संपूर्ण निर्भयता, संपूर्ण निर्विकारिता अभी तक पाई नहीं है। वो भय ही था जिसकी वजह से वो इतना डर गया और भाग खड़ा हुआ। वो महिला कहती है, आग लगाते समय उस भवन में यदि वो योगी है तो भी आग लगा दो, वो भी भस्म हो जाए। विकार बहुत गहरे हैं, उन तक पहुंच पाना लंबी यात्रा है, और जिसमें वो है उसे भी उसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि वहां तक हाथ पहुंचता ही नहीं। मनस्वित चेतना को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक वो जो ऊपर है, एक दूसरा जो भीतर है, द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस, एक बाह्य मन एक भीतरी मन, एक आउटसाइड एक इनसाइड, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, एक मेल एक फीमेल, अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक चेतन मन एक अवचेतन अर्धचेतन, और दोनों के बीच एक पर्दा है, एक दीवार है मोटी सी, हम जो है वो नहीं है जो चेतन में दिखाई दे रहा है, जो मन में चल रहा है, वो केवल एक भाग है, नौ भाग वो अवचेतन है जो भीतर है, जैसे कोई हिमखंड आइसबर्ग जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो केवल एक भाग है, नौ भाग नीचे है। विकार उस अवचेतन में छिपे हैं, किसी भी कर्म को बार बार दोहराया जाता है तो वह संस्कार बनता है। संस्कारों की जगह चेतन मन नहीं अवचेतन है, डीप, पर पहुंचे कैसे, क्योंकि ये दीवार ये पर्दा, संतों ने कहा है ये घूंघट है, घूंघट के पट खोल तुहे पिया मिलेंगे, ये कर्टन ये वॉल ये पार्टीशन, द प्री कॉन्शियस बैरियर कहते हैं साइकोलॉजी में से, जो दोनों के बीच में है, कभी कभार वो खुल जाता है, सुबह सुबह खुलता है, रात को सोते समय खुलता है, बाकी समय बंद रहता है। कितना भी डालते जाओ ज्ञान योग धारणा, ऊपर ऊपर तैरते रहता है, भीतर तो कुछ भी नहीं पहुंचता, भट्टिया कर ली क्या कुछ कर लिया पर भीतर नहीं पहुंचे, सामान ले लिए तिलक ले लिए, सब ऊपर ऊपर ही डोल रहा है। अवचेतन तो उसे स्वीकार ही नहीं करता, अवचेतन में तो वही डीप वासनाएं भरी है, वही घृणा वही नफरत, क्या करे, कैसी साधना करे और कैसा पुरुषार्थ करे, जो चित्त गहराई से साफ हो जाए। अब तक के ज्ञान योग ने ऊपर ऊपर की सफाई बहुत की है, पर भीतर की सफाई के लिए गहरे मौन की आवश्यकता है। कल भी कहा था, बिना मौन के सारी साधनाएं विफल है, और जिन्हें गंभीर साधना करनी है वो अपने मन को तैयार करे। मन में ढेर सारे प्रश्न है, ये कैसे वो कैसे, प्रश्न पूछ कर प्रश्नों के हल नहीं मिलते हैं। प्रश्नों के हल तब मिलते हैं जब मन शांत हो जाता है, जब चेतन मन इतना शांत हो जाता है अपने आप ये प्री कॉन्शियस का बैरियर खुलता है, और हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे ही पास है। गांठे हमने बांधी है, भट्टी का लक्ष्य है अवचेतन की गांठों को खोलना, तप का लक्ष्य है गहराई में जो गांठे बांधी है उन गांठों को खोलना। बुद्ध सभा में आते हैं एक रुमाल लेकर, हजारों भिक्षु बैठे हुए, हाथ में रुमाल है, कहते हैं ये क्या है रुमाल, फिर उस रुमाल में वो गांठे बांधना चालू करते, बहुत सारे गांठे, फिर पूछते ये क्या है, अब भी रुमाल है परंतु अब इस रुमाल में गांठे बांधी हुई है, अब इस रुमाल में जो गांठे हैं छोटी छोटी उसको खोलेंगे कैसे, रुमाल को खींचकर तान कर, जिस विधि से गांठे बांधी गई है उसी को रिवर्स करना पड़ेगा। वो संस्कार जिस तरह क्रिएट हुआ है 10 साल पहले, फिर से पास्ट में जाकर वहीं से उसको खोलना पड़ेगा। नहीं तो वो केवल दब जाएगा बस, और दमित भावनाएं और दमन किया हुआ चित्त और सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड माइंड एक वोल्केनो की तरह है, कभी भी फट सकता है, फ्रोजन वोल्केनो, ऊपर ऊपर से दिख रहा है कोई भी विकार नहीं है, निर्विकार हो गया है चित्त। वो योगी रात रात भर बैठ कर ध्यान करता है, शायद उसे भी नहीं पता उसके मन में अब भी भय है, करुणा की वो ऊंची अवस्था उसने अब तक नहीं पाई है, वो निर्भयता। तो साधना को गहरा करना है, यहां आए हैं तो साधक की भांति बैठना है, बहुत ज्यादा लिखने का भी पुरुषार्थ न करें, मन को शांत कर दो बस, मन जितना जितना शांत होता जाएगा चेतना में प्रवेश का द्वार खुलेगा, भीतर झांक सकेंगे, बाहर के पट खोल रे अंतर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर और अंतर के पट खोल, पट अर्थात पर्दा, आवरण, अ कर्टन, अ वनीर, अ वेल, अ कवरिंग, घूंघट, लक्ष्य रखना है मन को शांत रखने का, एक्साइटमेंट इज द एनिमी ऑफ योगी, योगी का शत्रु है किसी भी चीज की एक्साइटमेंट, क्योंकि एक्साइटमेंट में चित्त बाह्यमुखी हो जाता है। दादी गुलजार से पूछा था, दादी विदेशियों ने पूछा क्या हम आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आप इतने शांत हो, इतना साइलेंस, आर वी अलाउड टू बिकम जेलस ऑफ यू। दादी कहती है बचपन से ही मुझे बाबा काम देते थे, जाओ वतन में पूछ कर आओ, जाओ पूछ कर आओ उस अव्यक्त ब्रह्मा से जिसको तुमने देखा, और क्योंकि मुझे बार बार जाना पड़ता था साइलेंस मेरा स्वभाव बन गया, क्योंकि बातें करते करते अचानक फिर कोई ध्यान में नहीं जा सकता। इसके लिए मौन केवल एक दिन, दो दिन, एक घंटा, दो घंटा, ये साधना नहीं है। मौन जीवन शैली हो जाए, मौन अर्थात चुप रहना नहीं। चुप रहना एक छोटा सा भाग है उसका। मौन अर्थात आत्मचिंतन, मौन अर्थात आत्मनिष्ठ अवस्था, मौन अर्थात देहात्म बुद्धि का त्याग, मौन अर्थात जो हूं, जो मेरा स्वरूप है उसमें मैं स्थित हूं, ये मौन है। और ये एक साधना है, और आप सब लोग जो यहां आए हैं, गंभीर साधना का लक्ष्य है, परंतु आज सारे दिन भर क्या किया, रात में बैठ के थोड़ा सोचना है, इतने सब मिलकर आए हैं, संगठन का बल है, और ऐसा मौका शायद फिर ना आए, शायद ऐसी ये भट्टी हमारे जीवन की अंतिम भट्टी ही हो, क्योंकि कल क्या होगा उसकी कोई गारंटी। इस शरीर का भी तो भरोसा नहीं, यहां से वापस घर कब पहुंचेंगे, कौन सी तारीख पहुंच रहे लौकिक, वापस पहुंच किस तारीख को रहे, 20 को, तो आपकी भट्टी चालू होगी 21 को, ठीक है। ये है रिहर्सल, ये है पूर्व तैयारी, यहां से तैयारी करनी है किस भट्टी के लिए, जो वहां जाकर चालू होगी। 21 डेज, 21 तारीख से 21 दिन की, यहां से जाने के बाद, ये सार्वजनिक है वो व्यक्तिगत होगी, ये सर्वविदित है वो गुप्त होगी। यहां पे वक्ता क्लासेस और करा रहे, वहां हम स्वयं होंगे। यहां पर टॉपिक्स स्पीकर चूज कर रहा है, वहां का टॉपिक हमारा अपना होगा। इसमें आवाज है, उसमें आवाज नहीं होगा। इसमें शेयरिंग है, उसमें किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है। और किस टॉपिक पर भट्टी करनी है, वो अगले 3 दिनों में भगवान के घर में अमृत वेले के शांत वायुमंडल में परमात्मा द्वारा आपको दिया जाएगा। जो जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसी पर काम करना है। सब कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा ज्ञान योग से संबंधित, फिर भी वो संस्कार, वो कमी अब भी है, तो यहां से जाने के बाद अपना एक चार्ट बनाना है। आज रात को ही चार्ट फिक्स करना है, डेट्स 21 से तो कब तक आते हैं, आता है वो डेट 21 डेज, वहां की दिनचर्या क्या होगी, उसकी प्लानिंग यहां बैठ के करनी है। चाहे सेवा केंद्र पर रहते हैं, चाहे घर, चाहे ऑफिस, टॉपिक क्या होगा, एक टॉपिक चूज करना है, या मल्टीपल टॉपिक्स चूज कर सकते हैं। किसी का अमृत वेला नहीं हो रहा है तो 21 दिन केवल अमृत वेले पर काम करेंगे, दिन रात अमृत वेले से संबंधित जो कुछ है वो पढ़ेंगे। किसी के संबंधों में कड़वाहट है, टकराव, वो संबंधों पर काम करेंगे। किसी का ब्रह्मचर्य अभी तक भी स्थिर नहीं हो रहा है, किसी का चिंतन ही नहीं होता है, किसी के ऑफिस में कलह है, संघर्ष है, घृणा है किसी के प्रति, या कोई सफर कर रहा है, कोई दूसरा उसे परेशान कर रहा है, किसी एक आत्मा के साथ ऐसा कड़ा हिसाब है, न वो कहीं जाती है न हम कहीं, रहना एक ही साथ। बाबा को प्रार्थना कर करके थक गए हैं, बाबा उसकी ट्रांसफर कराओ, पर ना वो जाती है ना हम, कोई कहीं नहीं जाएगा। परमात्मा महावाक्य है, ना स्थान बदलेगा ना व्यक्ति बदलेंगे ना परिस्थितियां बदलेगी, तुम्हें बदलना है। ना स्थान बदलेगा ना व्यक्ति बदलेंगे और ना परिस्थितियां। अगर भाग के चले भी गए तो यहां एक रावण है, वहां 10 रावण है। नए डिपार्टमेंट, नया घर, नया ऑफिस, नई कंपनी, नया सेंटर, अगर भाग कर गए तो। और हिसाब किताब किसी को छोड़ता नहीं है। जैसे गाय का बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। हिसाब किताब अपने मालिक को ढूंढ ही लेगा और आ जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि रियल भट्टी तो यहां से जाने के बाद चालू होगी। ये उसकी पूर्व तैयारी है, 3 दिन प्लानिंग कर लो। नहीं तो लोग मधुबन में आते, बहुत अच्छी भट्टी करते, बहुत अच्छा अनुभव होता है, वहां जाते हैं, उसका प्रभाव रहता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और बाद में केवल एक यादगार रह जाती है, बहुत अच्छी थी। कैसी थी भट्टी? बहुत अच्छी। बस क्योंकि आए केवल एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट करके चले गए, ऊपर ऊपर से थोड़ी सी सफाई हो गई, थोड़ी खुशी मिल गई, थोड़ी शांत हो गया मन। पर याद रखना है, जो शांति का यहां अनुभव हो रहा है वो तुम्हारी शांति नहीं, मधुबन की शांति है। जो अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है वो तुम्हारा अशरीरीपन नहीं, मधुबन का दिया हुआ अशरीरीपन है। यहां से जाते ही अगर इस अशरीरीपन को अपना नहीं बनाया तो वो यही रह जाएगा। वहां जाते ही वापस जैसे थे, वही दिनचर्या, वही संघर्ष, वही विकार, वही द्वंद, वही जद्दोजहद। इसलिए पक्का काम करके जाना है, कच्चा नहीं, ये तैयारी है। यहां जो भी सुन रहे हैं क्लासेस, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। सुनते समय लक्ष्य रखना है, केवल लिखना नहीं है। दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है, जो मौन है, उस मौन में अपने भीतर प्रवेश कर जाना है। क्योंकि काम बहुत बाकी है जो करना है। मोटी दीवार है सब प्रीकॉन्शियस की, पहुंच नहीं पाते, और एक एक परत हमको खोलनी है। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसी 8 परतों की, ऐसे 8 पट जो आवरण हो गए हैं। जब जब इनको जब तक नहीं खोलते तब तक भीतर की ज्योति का साक्षात्कार नहीं हो सकता। किसी राज्य में मुख्यमंत्री जो था उसने शरीर छोड़ दिया। राजा ने घोषणा की पूरे राज्य में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हें लाया जाए, उनमें फिर चुनाव होगा। तो ऐसे 3 व्यक्तियों को चुना जाता है। राज्य बहुत बड़ा है, सम्राट है वो, दूर दूर से वो चुने हुए 3 व्यक्ति पहुंचते हैं। जैसे उस शहर में, राजधानी में आते हैं, उनके मन में है आखिर हम तीनों में कौन सी परीक्षा होगी अब। पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि परीक्षा कौन सी होने वाली है, सभी नगरवासियों को पता है। हम तीनों को एक कमरे में, एक महल में बंद कर दिया जाएगा, उसे ताला लगा दिया जाएगा, और जो उस ताले पर जो पहेली है, पहेली होगी एक पजल, उसको सॉल्व करके बाहर निकल जाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसकी चाबी नहीं है, एक पहेली लिखी है, एक कोड है। तो वो लोग सोचते हैं हमें, हम ना तो इंजीनियर है, ना तो हम चोर है, ना तो हम ताले बनाने वाले हैं, फिर हमें पता कैसे चलेगा। उनमें से दो भाग भाग के शहर में जाते हैं, मार्केट में सारी किताबें खरीद के लाते हैं, तालों की जानकारी रखने वाले सभी लोगों से मिलते हैं, और रात भर किताब पढ़ते रहते हैं, क्योंकि दूसरा दिन निर्णायक है। पर उनमें से एक जो है वो आराम से बैठा रहता है और सो जाता है। वो दो सोचते हैं शायद इसने आशा ही छोड़ दी है जीतने की। दूसरे दिन जब वास्तव में पहुंचते हैं वहां, तो वो खबर, वो अफवाह नहीं, वो तो सही थी। राजा वास्तव में उन्हें अंदर एक महल बनाया, उसमें भेज देता है। वो दो लोग अपने कपड़ों के अंदर किताबें भरकर छुपा के ले जाते हैं, क्योंकि शाम को भेजा जाता है, दूसरे दिन प्रतियोगिता है, और वो रात भर पढ़ना चालू करते हैं तालों के बारे में जितना कुछ जान सके। एक रात तो सोए नहीं है, और ये दूसरी रात, और वो जो एक है वो शांति से सो जाता है। उनको कंफर्म हो जाता है कि ये कंपटीशन से आउट है, अच्छा ही है, अब दोनों के ही बीच में है। एक तो पहले ही अपने आप कम हो गया है, दूसरा दिन प्रतियोगिता चालू। वो दोनों फिर पढ़ने लगते हैं, क्या होगा, ताला लगा हुआ है, कैसे बंद ताले को, जो भी बाहर से लगा हुआ है और हमें बाहर निकलना है। देखते हैं उसको, वो अभी भी सोया हुआ है, आंखें बंद करके बैठा है बस। और आधे घंटे के बाद वो तीसरा उठता है, जाता है, दरवाजे को धक्का लगाता है और बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद राजा और वो तीसरा बाहर आते, अंदर आते, कहते हैं, राजा कहता बस करो, चुनाव हो चुका है, ही इज प्राइम मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुका है। कैसे, ताला बंद था ही नहीं, ताला खुला ही था। उस तीसरे से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता, तुम तो सोए पड़े थे। वो कहता है, पिछले दो दिनों से तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, हजारों प्रश्न है तुम्हारे मन में, मैंने एक ही काम किया, सभी प्रश्नों से मन को मुक्त करने का, मैंने एक ही काम किया, चेतन मन को शांत करने का। और जब चेतन मन शांत हो जाता है, अपने आप उत्तर आ जाता है। बाबा को बैठ के पूछने से कुछ नहीं मिलता, बाबा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बताओ बताओ बताओ, कैसे घर वालों को ज्ञान मिलाऊं, कैसे पति को पत्नी को ज्ञान मिलाऊं, कैसे बेटी को ज्ञान मिलाऊं। बेटी माँ चाहती है कि संडली पर बैठकर मुरली सुने सुनाए, ब्रह्मा कुमारी बन जाए, और बेटी को इंतजार है स्वप्न के सौदागर का, जो घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसे ले जाएगा। और माँ कहती है, बाबा इसे ब्रह्मा कुमारी बना दो कैसे भी करके। दिशाएं विपरीत है, हर एक कबाड़ अपना है। भगवान कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर नहीं करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। वो डिटैच्ड है, प्रकृति के डिपार्टमेंट में वो इंटरफियर नहीं करता है, और कर्मों के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता है। जिसने जो भी किया है उसको मिलेगा, Not a single blow is undeserved. स्वामी विवेकानंद का लेक्चर है, सेंट फ्रांसिस्को में दिया हुआ 1900 में, कर्म फिलॉसफी। जो घूसा तुमको मिल रहा है, ब्लो, तुम उसके लायक थे, वो मिलना ही चाहिए था, यू डिजर्व इट। कर्मा हैज नो मेन्यू, कर्मा का कोई मेन्यू नहीं है, कर्मा कैफे, कर्मा रेस्टोरेंट में कोई मेन्यू नहीं है, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। आप वेटर को नहीं बुला सकते इधर आओ ये मुझे लाके दो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें मिलना है। तो लक्ष्य रखना है, मन को शांत कर देना। बहुत सारे प्रश्न नहीं, कुछ भी प्रश्न नहीं, सभी प्रश्नों के उत्तर मौन से मिलते हैं। गुरु बैठा हुआ है, शुकदेव नैमिचारण्य वन, हजारों 12 साल का छोटा बच्चा बैठा हुआ है, शुकदेव भागवत कथा चल रही है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। इतने सारे साधु महात्मा बैठे, सब बूढ़े बूढ़े हैं, सबके मन में प्रश्न है, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्न संशया। वो कुछ बोल नहीं रहा है, केवल उसका मौन ही काफी है उनके सभी संशयों को दूर करने के लिए। वो पावर है साइलेंस में। इसके लिए साइलेंस ये नहीं कि आज हमने कुछ भी नहीं बोला, इसको साइलेंस नहीं कहते, साइलेंस स्वभाव है, आदत है, नेचर बनाओ उसको। कर्म किया वहां बोलना पड़ता है, बोलो, कर्म पूरा हुआ मौन, इंटरमिटेंट साइलेंस। और साल में एक बार अपनी सोलो भट्टी करनी है, रिट्रीट करनी है, कम से कम 10 दिन जगत से नाता कट ऑफ, टोटल मौन, अगर हो सके तो कोई ऐसी जगह मिल जाए वहां पर जाकर। विदेश में भट्टियां भारत के जैसी भट्टियों जैसी नहीं होती है, कोई क्लास नहीं होता है उसमें, साइलेंस रिट्रीट होती है, बैठते हैं, कोई किसी से कुछ बात नहीं करता, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल पहले दिन ही दे दो, आखिरी दिन मिलेगा 12वें दिन। ऐसी जगह किसी से कोई संपर्क नहीं, पहाड़ों पर कहीं, डीप रियलाइजेशन उनका लक्ष्य होता है, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, नो इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड। पहला दिन, दूसरा दिन मौन का, तीसरा दिन, चौथा दिन जब मौन का चालू होता है तब थोड़ा थोड़ा झलक मिलने लगती है भीतर की, तब तक तो केवल उधेड़ भून है संकल्पों की, पता ही नहीं चल रहा है अंदर क्या हो रहा है, काली सुन रहे, बहुत अच्छा लिख रहे, बहुत अच्छा लिख रहे, बातें कर रहे, कुछ ये केवल ऊपर है। मौन की उस अवस्था में रियल अनुभव चौथे दिन से चालू होते, 3 days जीरो स्पीच, एंड देन 4th day भीतर की झलक, पहला पट अज्ञान का पट, अविद्या का पट, अंधकार का पट, इसको खोलना है। हमने अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी अंदर से समझ रखा है कि हमने सब जान दिया, पर जो कुछ हमने जाना है सम टोटल, वो केवल सूचनाएं मात्र है। किसी को भी यहां बिठा दो और उसको कहो भाषण दो, ब्राह्मण इतने पावरफुल और स्ट्रांग है कि 1 घंटा किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं। उसको बताओ बाप समान कैसे बनना, बाप की 1 बात बतानी पर 1 घंटा तो आराम से विस्तार करके बोला जा सकता है। रोज भले 8 बजे उठता हो पर उसको कहो अमृत वेले के महत्व पर बोलो, सो ऐसा धुआधार भाषण करेगा कि सामने वाले सोचेंगे सही में हमें करना चाहिए अब, और वो अभी अभी 8 बजे उठकर 9 बजे लेक्चर देने आया था। भाषण देने का धारणा से कोई संबंध नहीं है, भाषण कला है केवल। एंगर मैनेजमेंट पर क्लास कराओ और उसके बाद में ऐसा गुस्सा, टाइम मैनेजमेंट पर क्लास कराने जा रही है, रेलवे स्टेशन पर उतरे, ट्रेन से जा रहे, और ट्रेन छूट गई, क्लास किस पर कराने जाने जा रहे थे, टाइम मैनेजमेंट पर, दुकान में टाइम लगा दिया पानी भी नहीं लेने में, ट्रेन गई। सबसे पहला पट है अज्ञान, ये स्वीकार करो हमने अब तक जो जाना है कुछ नहीं जाना है, बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की तीव्र उत्कंठा, इंटेंस क्वेस्ट फॉर नॉलेज, जितनी तीव्र होगी जानना है, जानना है क्या है, क्यों ऐसा कह रहा है भगवान, कुछ तो होगा, क्योंकि जो जाना है हमने समझा ये संपूर्ण है, बताने वाले ने सब कुछ बता दिया पर हमारी समझ में खोट है, दोष है। अगर जाना होता तो ये भय क्यों फिर उस योगी जैसा, अगर जाना होता समझा होता, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम, संपूर्ण समझ अर्थात संपूर्ण मुक्ति। अगर ब्रह्मचर्य को संपूर्ण जाना होता तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य प्रकट हो गया होता, पर हुआ नहीं है, अब भी दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, समझा नहीं है। अभी शांतिवन में मुरली चली, लास्ट लाइन क्या थी, समझा, क्यों करना पड़ता है उसको, समझा समझा, शायद हमने समझा नहीं है, इसलिए भगवान क्या कहता है, समझा समझा, हमें रोक रहा है, बड़ा प्यार से कह रहा है, पर उस समझा में बड़े राज छिपे हुए, अर्थात किसी ने कुछ भी समझा नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है। तो सबसे पहला पट है, सबसे पहला जो पर्दा है, सबसे पहला जो घूंघट है, वो है अज्ञान का। ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है भ्रम कि हम ज्ञानी हैं। The greatest enemy of knowledge is not ignorance but illusion that we know. ये भ्रम कि मैंने सब जान लिया, कुछ भी नहीं जाना, अब मैं जानूंगा, अब मुझे पता करना है। इन तीन दिनों यहां पर एक साधक की भांति बैठो, भूल जाओ हम क्या है, उधर किस कंपनी के मालिक है, बॉस है, टीचर है, क्या है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा बालक बन जाओ मधुबन में, छोटा सा बालक, एक छोटा बालक जो सबसे सीखता है, जिसे कुछ भी नहीं पता, जिसका आज ही जीवन चालू हुआ है, जैसे समुद्र तट पर है, वहां पर जो पड़े हुए मोती है वो बीनता है, उन सीप को कितना आश्चर्य से देखता है, ओहो आश्चर्य है, विस्मय है हृदय में, सूरज उगता है, आ वैसे ऐसे छोटा बच्चा बन जाओ, हमने कुछ भी जाना नहीं है, यह पहला। दूसरा पट है बंधन, बंधन, हमने अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी में बांध के रखा है। गांठ छोड़ो, हमने पकड़ के रखा है, पति ने पत्नी को पकड़ के रखा है, पत्नी ने पति को पकड़ रखा है, टीचर ने स्टूडेंट को पकड़ रखा है, स्टूडेंट्स ने टीचर को पकड़ रखा है, मित्र ने मित्र को पकड़ रखा है, एम्प्लॉय ने बॉस को पकड़ रखा है, आसक्ति है। और जितनी गहरी पकड़ होगी, एक रस्सी है और मैं उसको पकड़ता हूं, जितना जोर से पकड़ूंगा यहां क्या होगा, लाल लाल, छोड़ो, क्या कर दो, छोड़ दो। ये बंधन ही, जिसे मैं समझ रहा हूं, जो व्यक्ति मेरे पुरुषार्थ में सहयोगी है, शायद वही सबसे बड़ी बाधा है। जिसे मैं समझ रहा हूं, इसकी पालना की वजह से मैं चल रहा हूं, शायद वही बाधा है। यही तो रियलाइज करना है इस भट्टी में। नोट्स बहुत है, ज्ञान तो विस्तार बहुत है, हजारों क्लासेस की तो बाढ़ आ गई है, इतने क्लासेस है, किस किस को और क्या क्या सुने और कितना सुने, सुन सुन के स्पिरिचुअल इनडाइजेशन, आध्यात्मिक अपच, सुनना कम करो, चिंतन को बढ़ाओ, लिखना कम करो, चिंतन को बढ़ाओ, एकांत को बढ़ाओ, मौन को बढ़ाओ। एक घंटे का मौन वो दे देगा, सच्चा मौन, जो 12 घंटे का ज्ञान चिंतन भी नहीं दे सके, जो ज्ञान की चर्चा नहीं दे सकता, क्योंकि यहां तो हमें अंतर के पटों को खोलना है, जो बंधन है उसको देखना है, आंखों में आंखें डालकर एनालाइज करना है, इधर उधर से देखना है, एक एक परत को देखना है, एक एक संबंध की। दो व्यक्ति का आपस में संबंध है, ऊपर से दिखता है संबंध बहुत अच्छा है, पर उन दो व्यक्तियों के संबंधों में 1000 परतें हैं। अभी ये परत ऊपर है, थोड़ी देर में नीचे वाली ऊपर होगी, फिर ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, कभी बहुत प्रेम क्या करूं इसके लिए, और कभी बाबा इसकी ट्रांसफर कराओ जल्दी या मेरी कराओ। लव हेट रिलेशनशिप, पति पत्नी से झगड़ता है, सुबह सुबह ऑफिस जाने के पहले, ऑफिस जाते जाते सोचता है अच्छा किया उसको सबक सिखाया, ऐसा ही डांटना चाहिए उसको, बहुत सिर पर चढ़ा के रखा था। ऑफिस पहुंचता है, सोचता है थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था, इतनी भी खराब नहीं है, अच्छी है। दोपहर होते होते लंच के समय में सोचता है नहीं, वेरी बैड, चिंतन करता है कि गलती तो मेरी थी, उसकी कहां थी गलती। शाम होते होते सोचता है जाके अभी माफी मांग लूंगा, बस गलती मेरी है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। जाते जाते सोचता है कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा, गुलदस्ता, और पूरी तैयारी करके पूरा फ्रेम करता है कौन से शब्दों का प्रयोग और किस तरह करूंगा वाक्य रचना। घर पहुंचता है, फिर से झगड़ा चालू। झगड़े का बीच अवचेतन में, काम जो किया वो चेतन में ऊपर ऊपर, इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड ने उसको किक मार दी, फेंक दिया बाहर, और वही रूप बाहर प्रकट हो गया फिर से। तो इस भट्टी में या यहां से जाने के बाद जो भट्टी होगी वो व्यक्तिगत होगी, वो टॉपिक किसी को बताना नहीं है, चुपचाप अपनी भट्टी करनी है। किसी की भोजन की हो सकती है, किसी की किसी बात की भी हो सकती है, पर काम करना है अपने ऊपर, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जो बंधन है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कट करना। इंग्लिश में एक मेडिटेशन करते हैं विदेशी लोग, अगर किसी व्यक्ति से अटैचमेंट है तो कहते हैं मेडिटेशन में उस व्यक्ति को इमर्ज करो, देखो। और दो व्यक्तियों के बीच सिल्वर कॉर्ड्स होते हैं, सिल्वर कॉर्ड, रस्सियां नाभि से उस तक जुड़े हुए, और भी सब जगह से, दो व्यक्ति सिल्वर कॉर्ड्स, अमृत वेला, एक सीजर लो इमेजिनरी और उसको कट करो। सूक्ष्म काम, ये वो लोग कहते हैं जो आध्यात्मिक नहीं है परंतु इस तरह से काम करते हैं, कट करते जाओ। किसी व्यक्ति से आसक्ति है या घृणा है, एक संबंध ऐसा बन गया है कि डिपेंडेंस हो गया है, कट द कॉर्ड्स, उसको भी मुक्त हो जाने दो, हम भी मुक्त हो जाए। ये बंधन उसके लिए भी बाधा है, मेरे लिए भी बाधा है। तीसरा, कंफर्ट जोन, ये भी एक पट है। हमने अपने आप को एक सुरक्षा क्षेत्र में रखा है, अध्यात्म अर्थात छलांग असुरक्षा में, एक सुरक्षा कवच निर्माण कर रखा है, कंफर्ट जोन, बस इसमें हम करेंगे, कोई भी नई चीज करना नहीं चाहते जिसमें रिस्क है। अध्यात्म की तो यात्रा ही चैलेंजेस की यात्रा है, रिस्क की यात्रा है, नया नया करने की यात्रा है। आज तक नहीं किया है, प्रयोग करो, जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, प्रयत्न करो, देखो क्या होता है 1:30 बजे उठकर, न्यू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके देखो क्या मिलता है। 2 से 5 के योग में, 2 से 3.5 का योग और 3.5 से 5 का योग, इसमें क्या अंतर है, खुद ही अनुभव करो, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, कोई दूसरा हमें बताए। पूरा दिन ऑफिस में है, काम कर रहे, लक्ष्य रखो मौन में रह के सेवा करेंगे। रोज दुखी हो के सेवा करते हैं, आज खुश हो के सेवा करो। जगदीश भाई और रमेश भाई पहली बार न्यूयॉर्क गए थे, वहां पर एक छोटा सा कमरा मिला था उन दोनों को रहने के लिए, और वहां पर वो दोनों क्या सेवा करते थे, रमेश भाई बर्तन धोते थे और कपड़े साफ करते थे, और जगदीश भाई जो थे वो झाड़ू लगाते थे। और कौन सा गीत गाते थे, किसी ने अपना बना के मुझको झाड़ू लगाना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको बर्तन धोना सिखा दिया। अपने कर्म को एंटरटेनमेंट बना देना है। तभी जगदीश भाई की और एक बात है, जब वो वापस आने लगे तो कहने लगे, मैं अब जा रहा हूं, दिल्ली जा रहे हूं, तो कमला नगर में थे, तो कहते हैं कि मैं विग लगा के जाता हूं, बाल तो है ही नहीं पहले, और वहां जाके बताऊंगा कि देखो पहली बार बाबा की सेवा करने गया ना, तो बाबा ने ये पुरस्कार दे दिया, बाल उगाए हैं, सेवा का फल। तो सेवा क्या बन जाए, एंटरटेनमेंट, दुखी होके मर मर के नहीं कर, खुशी खुशी से, आनंद से, और चैलेंजेस लेते हुए, जो मुश्किलें आए, जो दुख हुआ, उसको दुखी हो, खुशी हो, खुशी होनी चाहिए। हिसाब चुकतू हो रहे, किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा हुआ चुकतू हो गया, और भी कोई बोलने वाला है तो आ जाओ फटाफट, जिस जिसको अपमान करना है, जिस जिसको डांटना है, जिस जिसको जो करना है, जो बोलना है, सब बोल लो, अंदर का सब निकाल लो, अंदर जो भरा है ना घृणा नफरत हमारे लिए, उसका हल्कापन आ जाएगा उसको, ठीक है निकाल दो सब, तुम्हारा उसी में कल्याण है। और रही बात हमारी, आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। तीसरा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नया करो कुछ, वो जो अब तक किया नहीं है, गो फॉर लॉन्ग वॉक के लिए निकल जाओ, 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स, छुट्टी का दिन है, समय है, एकांत में चले जाओ, 8 घंटा 10 घंटा किसी प्राकृतिक स्थान पर बिताओ अकेले, सेल्फ बड्डी, जितना अनाउंस करके करेंगे उतना प्रभाव कम। मैं आज मौन करने वाला हूं, बस यहीं पे मौन तोड़ गया, आज मेरी बड्डी है खत्म, अब मैं ये करूंगा, याऊं करूंगा, त्याऊं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बस वहीं पे खत्म। जो करोगे उसे गुप्त कर दो, चौथा, डिजिटल, डिजिटल दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश। किसी ने, गूगल का जो सीईओ है, सीईओ, उसने कहा है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। ऑनलाइन अगर जाते हो तो पर्पस के साथ जाना है। क्लास सुनने जा रहे हैं, क्लास सुनो और क्लास सुनकर निकल के आ जाओ, नहीं तो वो नगरी बहुत बड़ी है, भटका देगी। पर्पस है कुछ ढूंढना है, उतना ढूंढा और वापस, बस। नहीं तो ये ऑनलाइन है, ये एडिक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन गेम्स, एडिक्ट हो गए हैं। हम राउंड लेते हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे वहां होते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, एडिक्ट हो गए हैं गेम्स के, भयंकर एडिक्शन है वो, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ढूंढते रहते क्या खरीदूं, क्लिक चीज आ जाती है घर पर, ऑनलाइन न्यूज, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या कहा, उसने क्या कहा, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट पर्पस, और जाके वापस आ जाना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। अपने डिजिटल रिलेशनशिप क्या है उस पर स्टडी करो। उस मोबाइल को भी सुबह सुबह क्या कर देना, सकाश थोड़ी सी, बहुत विकर्म कराता है। प्यूरिटी की थोड़ी इधर उधर से सकाश दे दो उसको। वो जो एप्स इंस्टॉल कर रखे हैं ना, उनको भी थोड़ी सकाश देते रहो। खींचते हो, मुझे देखो, मुझे देखो, कुछ आया है मुझ में नया, इनबॉक्स कम, ब्लैक होल की तरह है, सक कर लेता है। अगला, ईगो, अहंकार। हमारा अहंकार इतना सूक्ष्म है, हमें नहीं पता हम कितने अहंकारी है। वो तो तब पता चलता है जब कोई अपमान करता है, वो तो तब पता चलता है जब कोई रिस्पेक्ट कम देता है, वो तो तब पता चलता है जब ग्लानी होती है, तब तक कुछ पता नहीं चलता है। सब लोग स्तुति कर रहे हैं, अहंकार का कहां पता चलता है कुछ। जब चोट लगती है, एक चोटिल चेतना को अनुभव होता है कि बहुत बड़ा हर्ट हुआ है, जितना ज्यादा अहंकार उतनी ज्यादा फीलिंग। मुझे मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे कोई देखता नहीं, सुबह से बीमार हूं, पूछता भी नहीं कोई। एक भाई अनुभव सुनाते हैं, नीचे बरेलती में थे, बीमार था। दूसरे भाई को कहा, थोड़ा कुछ लेके आओ मेरे लिए खिचड़ी। वो शाम तक आया ही नहीं, शाम को लेके आया, भूल ही गया। लोगों को वैल्यू नहीं है हमारी। हम जब दूसरे बीमार है तो उनकी इतनी सेवा करते हैं, हमारे साथ कुछ हुआ तो कोई पूछता तक नहीं, कुछ चाहिए, कुछ पिया, कुछ लाऊं, कुछ नहीं पूछता। अपने अहंकार को साक्षी होकर देखना है। इतना भी ज्ञान कि मेरे में अहंकार है काफी है, एटलीस्ट उस अवस्था से तो, कि हमें पता ही नहीं अहंकार के बारे में। हम उस पर काम तो करेंगे थोड़ा थोड़ा, अहंकार है जानता हूं, पर काम चालू है, एक दिन सफलता मिलेगी। अगला, फूड, भोजन। भोजन के साथ हमारा किस तरह का संबंध है, क्योंकि जो हम शरीर में डाल रहे हैं उसी से मन बन रहा है, या फिर जो डाल रहे हैं वही मन बन रहा है। आयुर्वेद कहता है जो भोजन हम खाते तीन भागों में विभाजित होता है, जो स्थूल है निकल जाता है व्यर्थ, जो बीच का है वो शरीर बनता है, और जो ऊपर का है वो मन बनता है। क्या हम खा रहे हैं उस पर भी अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल भट्टी करनी है, रिलेशनशिप टू फूड। ये खाया तो क्या अनुभव, ये खाया तो योग की स्थिति क्या। भारी खाओ उतना मन भारी शरीर भारी, जितना हल्का हो गई चेतना भोजन उतना मन अपने आप हल्का रहेगा, अशरीरीपन का अनुभव बहुत सहज होगा। इसके लिए काम, गहरा काम करना है भोजन पर, थोड़ी जानकारी बढ़ानी है उसकी। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य अपनी कब्र खोदता है किससे, अपने दांतों से, खा खा के। जैसे किस दिन की हम बात कर रहे हैं उसमें भोजन पर काम करना है, हो सकता है बहुत सारी बीमारियां चली जाए। उसके बाद में अगला, लोभ या संग्रह वृत्ति। बाबा कहते हैं तुम बड़े लोभी हो, क्योंकि तुम्हारा लोभ क्या है, स्वर्ग, पर यहां पर तुम वनवाह में हो, कोई वस्तु नहीं चाहिए हमें। निर्मल शांता दादी थे, कोई कुछ कुछ लेके आते थे, वहां जो बहनें थी वो फिर बीच में कहती भी थी कि हाँ दादी के लिए ये लेके आना। दादी उन बहनों को कहती थी तुम क्या भूखी हो, मांगना नहीं है किससे कुछ, कोई दे ठीक। और संग्रह, चीजें दबा के रखी है सारी, अलमारी खोलो तो पता नहीं कितनी उसमें साड़ियां और कितने कुर्ते उसमें और कितने जूते, ना यूज करते हैं खुद, ना करने देते हैं दूसरों को। संग्रह वृत्ति छोड़ दो, चीजें आएगी चीजों को जाने दो, जितना जाने देंगे और आएगी, जितना पकड़ के रखेंगे रुक जाएगी। इसलिए लेट गो, इस पर भी काम करना है। यहां बैठकर अपने घर का चक्कर लगाना है कल सुबह अमृत वेला, ठीक है? अलमारी एक एक खोल के देखना है अमृत वेला, बर्तनों की जो अलमारी रैक है ना उसको भी देखना है थोड़ा। कल सुबह अमृत वेले पूरे घर का चक्कर लगाओ, घर की एक एक दीवार को पवित्रता की किरणें दो, सेंटर की एक एक दीवार को प्यूरिटी की किरणें दो। ऑफिस और लोग और वहां की दीवारें, वो सीढ़ियां, वो रोड जो रोज जाते हो उसको यही बैठ के सकाश दो। एक यहां बैठ के काम वहां के लिए करना है, क्योंकि यहां से तो चले जाएंगे। इसके लिए यहां किस लिए आए हैं? तैयारी करने के लिए। वहां क्या करना है उसकी, यहां बैठे हुए वहां क्या करना है, हल्की हल्की मन में थोड़ी थोड़ी प्लानिंग चालू रहे। उसके बाद में आदत, अगला आदतें, कौन सी आदतें? पहली आदत आलस अलबेलेपन की आदत। उठाओ खुद को, जगाओ खुद को, बहुत सो लिए, समय कम है। पहले स्थूल में काम करना है और फिर सूक्ष्म में। अपनी दिनचर्या को ऐसा बना दो कि उसमें किसी भी व्यर्थ के लिए समय ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि सभी विकारों की जड़ है फुर्सत, खाली टाइम। हमें विकारों का कोई आकर्षण नहीं है, ना शरीर का आकर्षण है, पर खाली टाइम है। तो बुद्धि कहां जाती है फिर? मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, आकर्षण और भटकाओ। टीवी मीठा जहर है, टीवी, टीवी बाबा टीवी की बीमारी कहते थे। सिनेमा स्टॉप, सब गंदगी किचड़ा अंदर घुसता है, वो वायलेंस जो दिखाते हैं उसमें, तो हिंसा दिखाते हैं। हिंसा देखने वाला ये आंखें शांत कैसे हो सकती है? स्टॉप, ये आदत है आलस अलबेलेपन की। बेगिंग की, मांगने की, भीख मांगने की आदत। खुद के त्याग का वर्णन करने की आदत, ब्रैगिंग, मैं कितना बड़ा हूं। अपनी आदतों पर संशोधन करना, रिसर्च। यहां बैठ के देखना है पिछले 6 मास में मेरी क्या क्या आदतें थी। अमृत वेला हुआ उसके बाद क्या करता हूं? जाकर सो जाता हूं या कुछ और करता हूं? मुरली क्लास में क्या करता हूं? एकाग्रता कितनी रहती है? ऑफिस या सेवा केंद्र, सेवाओं में स्थिति कैसी रहती है? कोर्स कराते समय स्थिति कैसी रहती है? कौन सी आदत है काम करना है? और लास्ट भय, असुरक्षा। एक भय है अंदर, एक भय का पर्दा है, डर लगा रहता है कि कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ कह ना दे, कोई हमारे खिलाफ कुछ ना हो जाए। मैं चला जाऊं तो इनका क्या होगा? भय है, इतना सूक्ष्म भय है। और वो दिखाई नहीं देता, अचानक प्रकट होता है। छोटी छोटी बातों का भय, फोबिया जिसको कहते हैं, ये बीमारियों के रूप में आता है कई को। भीड़ से भय लगता है, माइक से भय लगता है, अकेले सोने से भय लगता है, अंधेरे से भय लगता है, ट्रेन में चढ़ने से भय लगता है, लोगों को सामने देखकर भय लगता है। छोटे छोटे भय समाये हुए हैं चेतना में। हमें अपने भयों को, फोबियाज और फियर्स को आइडेंटिफाई करना है। बीमारी का भय, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। और कभी कभी ये भय इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति दिन रात इंटरनेट पर बैठ के सारा कुछ पढ़ता है और सोचता है ये सब मुझे हो रहा है, और फिर हमारे पास आते हैं कहते हैं मुझे कैंसर है। हमने कहा किसने बताया? सब पढ़ लिया है, ये जो दिख रहे हैं ना दाग उसी के तो है, कोई टेस्ट किया? टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, पूरा निकाल लिया इन्फॉर्मेशन। और कितना कन्विंस करो, उसकी मम्मी उसको समझाती है, कहती है मैंने इसको सब समझा दिया, मैं मानने को ही तैयार नहीं, कहता है कैंसर ही है, क्या करूं अभी इसका, इतना डीप चला गया है वो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। और दूसरे कोई और दूसरे लोग हैं वो कहते हैं बाकी सब बीमार पड़ते हम ही नहीं पड़ते, पता नहीं क्यों सब बीमार पड़ते, इतनी खातरी होती है, सब एडमिट होते हैं, हमको भी एडमिट करो, कोई ध्यान ही नहीं देता, हम भी तो कभी बीमार पड़े, हमें भी तो सलाइन लगे, वो सलाइन की बूंदे एक एक दिखती है टपकते हुए तो एकदम छाती फूल जाती है, वाह मजा आ गया। और फिर मिलने लोग आते अभी कैसे, हम कहते थोड़ा ठीक है पहले से, कहने में इतना आनंद अनुभव होता है, कोई गुलदस्ते लेके आते वैसे तो कोई पूछता नहीं, कमरे में हॉस्पिटल के रूम में जब कोई नहीं तो चुपचाप चले जाते बाथरूम तब, अगर कोई हो तो पकड़ पकड़ के जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं ना, रोज पूजा करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, पर जिस दिन महापूजा होती है और हजारों भगत है, ऐसा एक राउंड होता है धीरे धीरे, और जब कोई देखने वाला नहीं है तब जब दूसरे देखते हैं तो हम ऑल अलर्ट, यहां बैठ के योग कराना है और पीछे बैठ के वहां कोई देखने वाला नहीं है, यहां सारों की आंखें घूर घूर कर देख रही है, योगी स्टेटस का सवाल है, नींद आ रही है परंतु आंखें खोल कर नींद कर रहे, खुली आंखों में गहन निद्रा का अनुभव। सोएंगे नहीं, पक्का पकड़ के रखते अपने, नहीं तो लोग कहेंगे ये सोता है, वो भी संडली पर बैठकर, कच्चा सिक्का है, झूठा सिक्का। भट्टी का लक्ष्य है भीतर जाना, खुद को देखना, अपने स्वभाव को, अपने थॉट पैटर्न को, बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करना। पेशेंट आते हैं ओपीडी में, क्या तकलीफ है, कमर में दर्द है, एमआरआई करके आओ, एमआरआई करके आते, अरे एमआरआई में तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसमें तो बहुत कुछ आया, ये मन का वो, अच्छा पैदल चल के आया था, अभी तो चल ही नहीं जा रहा है रिपोर्ट देखने के बाद, कोविड के लिए ब्लड टेस्ट दे चुके हैं इतने, लास्ट सीजन में एक पेशेंट ने ब्लड टेस्ट दे दिया, दूसरे दिन कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे ही देख के रखा है आरटीपीसीआर, दूसरे दिन आराम से बैठ के चाय पी रहा है, फोन आता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अब हाथ कपने लगे हैं और अभी चला नहीं जा रहा है, पकड़ पकड़ के बेड पर लेके जा रहे, अभी तक सब ठीक था, रिपोर्ट सुना आधा बीमार। मन के पैटर्न्स को स्टडी करना है, क्या है, कोई अपमान करता है, कोई गाली देता है, कोई घृणा करता है, क्या होता है, हलचल होती है या स्थिर रहते है? कोई स्तुति करता है, क्या होता है, स्थिरता रहती है या गिर जाते हैं। योगी अर्थात समता, एक रस्तिति, समता ही पवित्रता है। चित प्रज्ञ, सुख दुख निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सब में समान, सेवा हो रही है नहीं हो रही है, स्थिर। तो ऐसे ये आठ पट है, पहला अज्ञान, दूसरा बंधन, तीसरा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, चौथा डिजिटल बंधन, पांचवा अहंकार, अगला भोजन, भोजन पर काम करना है, अगला संग्रह वृत्ति लोभ, अगला आदतें अपनी हैबिट पैटर्न्स की स्टडी, और लास्ट भय। मुझे किस चीज से भय लगता है। एक एक भय पर काम करना है और उसे खत्म करना है। भय को आंखों में आंखें डाल के देखो, वो भय भयभीत हो जाए हमसे। हम भूतों से डरने वाले नहीं, हम स्वयं भूतनाथ है। तो सभी डायरी पेन पेंसिल बंद कर देंगे, जो सामने आके बैठ सकते हैं वो सामने आ जाए और नीचे बैठ जाए। तपस्या पट पर बैठकर होती है, जो आराम से बैठ सकते हैं। और अगले 15-20 मिनट तक मौन मूर्ति बनकर बैठ जाना है, ना हाथ हिलेगा ना पैर। बुद्ध कैसे बैठे हैं, महावीर कैसे बैठे हैं, ब्रह्मा कैसे बैठा है, पोश्चर। फर्स्ट स्टेज इज पोश्चर। शरीर स्थिर, मन स्थिर। शरीर हिलेगा, मन भी हिलेगा। चाहे कितनी भी आवाज